मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो ज्यादातर समझ पर ही आधारित है, आइए एक ऐसे प्रश्न को लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां जो मैंने समझ की बात कही है, देखिए समझ आसमान से पैदा नहीं होती, जैसे अनुभव आसमान से पैदा नहीं होते, हवा में नहीं पैदा होते, शून्य से उत्पन्न नहीं होते, उसी तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग भी है, जो हमारी समझ भी है, वो शून्य से उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए बकायदे यूपीएससी ने अपने सिलेबस के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया, ठीक है, रट लिया, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी दृष्टि में यह है कि आपने समझा या नहीं समझा। वह यह बात इसलिए कहता है क्योंकि वो जिस तरह के प्रश्न तैयार करता है आपके लिए, वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये प्रश्न एक प्रकार के समझ की मांग करते हैं, तभी आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे। और यहीं पर बहुत से स्टूडेंट भटक जाते हैं, तीन तीन साल, चार चार साल, पांच पांच साल तक वो तैयारियां कर रहे हैं, किताबों पर किताबें पढ़े जा रहे हैं, और सच बात यह है कि उन्होंने रट भी काफी कुछ रखा है, उनकी दीवारों पर न जाने कितनी पर्चियां चिपकी हुई हैं, ये अनुच्छेद, वो ये परिभाषा, वो ये डेटा, सब कुछ उन्होंने रट लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि समझ विकसित नहीं कर पाए हैं। और जैसे ही थोड़ी सी समझ विकसित होती है, याद रखिए केवल प्री के ही क्वेश्चन नहीं बल्कि मेंस के प्रश्न भी आसान हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार शनिवार को हम लोगों के एक स्टूडेंट रहे शाश्वत अग्रवाल, जिनका 121 रैंक आई है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, मैं ही बातचीत करूंगा उनसे शाम 5 बजे, उसकी डिटेल्स मैं आपको कल दूंगा। आज केवल सतर्क कर रहा हूं कि आप जानेंगे इनफैक्ट कि सही मायने में समझ क्या होती है, वो आपको शायद बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब मैं जिस प्रश्न को ले रहा हूं पहले वो बता दूं, ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर है 26। बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न, समझ पर आधारित प्रश्न। समझ पर आधारित प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इस तरह की स्थिति के संपर्क में आया होगा, यानी कि यह खबर पढ़ी होगी, बशर्ते कि वो उड़ीसा का ना हो। हाँ, ये जरूर है कि अनिमेश प्रधान ने शायद इसे सीधे सीधे हल कर लिया हो क्योंकि वो उड़ीसा के ही हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इस घटना के बारे में कभी कुछ सुन लिया हो या पढ़ लिया हो। तो आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक, इन्वर्टेड में है, लघु कृषक बड़े खेत, लघु कृषक बड़े खेत, इसका इंग्लिश है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक, लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है, राइट। अब स्टेटमेंट देखिए, चार स्टेटमेंट है, ठीक है, और चार में से आपको एक पर निशान लगाना है ना, सीधे सीधे एक पर ही निशान लगाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी प्रश्न को पढ़ें, विकल्प पर जाकर के एक बार निगाह मार लें, टाइम मत लगाएं उसके साथ, निगाह मार लें कि इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उससे पढ़ते समय ही आपकी कमांड होने लगती है। ए, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करना। बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। हिंदी थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला वर्जन देख लें। सी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। ये सी है। डी है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरत के कृषि पण्य का उत्पादन करें। नो डाउट कि भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है। इसके बारे में आपका विचार क्या है? यह प्रश्न कैसा है? सरल है, कठिन है या सामान्य है? इसे आप कैसे हल करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकांश स्टूडेंट ने ये जो लघु कृषक बड़े खेत का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो संकल्पना है, इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैंने ओडिशा की बात की थी। ओडिशा की बात इसलिए की थी कि ओडिशा के कुछ किसानों ने, जो बहुत ही छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, उन्होंने इसे अंजाम दिया था। अब देखिए कि ओडिशा के कुछ किसान इसे कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो नेशनल न्यूज़पेपर में भी आए। तो मैंने यहां जो अनिमेश प्रधान की बात कही, वो इसलिए कही कि हो सकता है कि वो ओडिशा के चुकी रहने वाले हैं, तो कभी कहीं उनके ध्यान में ये खबर आ गई हो। अदरवाइज देश के जो स्टूडेंट हैं, इससे शायद ही परिचित होंगे। मैं तो देखिए डेली ऑडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, मैंने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सुना। यदि मैं आपकी जगह होता स्टूडेंट के रूप में, मैं इसे सॉल्व कर रहा होता, तो मैं इस प्रश्न को पढ़ने के बाद घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में पहली जो बात आती वो ये, क्या ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आम प्रश्न तो नहीं है, वेल नोन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कोई साइंस का प्रश्न हो, कि यदि आपको साइंस की जानकारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसे हल न कर सके। अगर विषय के रूप में देखें तो यह जो प्रश्न है वो किस विषय से है? किसान, एग्रीकल्चर, उसे संबंधित ये प्रश्न है और कुछ नहीं है। और आप देखेंगे कि इसमें जो आपको फंसाने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि मैं एग्जामिनर के माइंड को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, शायद इसका कारण यह रहा हो कि 5 साल तक मुझे कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिला। उस समय मैंने कॉपियां जांची और इसके बाद जब मैं सर्विस में आ गया, तो चूंकि पढ़ने और पढ़ाने में बड़ी रुचि थी, तो मैं न केवल सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के ही संपर्क में रहा, बल्कि जो दूसरे यूनिवर्सिटीज थे, जो कॉलेज थे, उनसे मैं जुड़ा रहता था, लेक्चर के लिए जाता था, और वहां से मेरे पास कॉपियां भी आती थी जश्न के लिए, कुछ पेपर सेट भी मैंने किए। तो मैं एग्जामिनर के माइंड को समझता हूं। तो एग्जामिनर ने इसमें ट्रिक क्या खेला है? उसने ट्रिक ये खेला कि भाई लघु कृषक बड़े खेत, देखिए ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि किसान तो छोटे छोटे हैं लेकिन उनके खेत बड़े बड़े, यही तो कहना है ना, लघु कृषक बड़े खेत। तो भाई जब किसान छोटे हैं तो उनके खेत बड़े कैसे हो जाएंगे? तो क्या सरकार लघु कृषकों को जमीन दे देगी कि बड़े बड़े खेत कर लो, या क्या करेगी? मिसेस गांधी के समय में एक योजना आई थी कि छोटे छोटे किसानों के जो खेत अलग अलग जगह फैले हुए हैं उनको एक जगह कर दिया जाए ताकि उनके खेत बड़े बन जाए। तो केवल छोटे किसानों के लिए नहीं थे बल्कि सभी किसानों के लिए थे कि मान लीजिए कि उनके खेत 10 जगह फैले हुए हैं, तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि उनके जो जमीन है, उनके जो खेत है, उनको एक जगह कर दिया जाए, उसके बदले में किसी दूसरी को दूसरी जगह दे दी जाए ताकि उनके एक चंक में खेत हो जाए, तो वहां बड़े आराम से वो खेती कर सकेंगे और मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बड़े जोतों में खेती करना आसान होता है और लाभदायक भी होता है। तो लघु कृषक बड़े खेत के लिए ऐसी तो कोई योजना सरकार की आई नहीं है, क्योंकि अगर आई होती तो आपके ध्यान में होती, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात होती। भारत में अगर किसानों के लिए सरकार कोई इतना बड़ा कदम उठाए और आप उसके बारे में न जान पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये एग्जामिनर बहुत अच्छे से जान रहा है कि शब्द के आधार पर जो स्टूडेंट है वो सोच लेगा कि भाई ये मामला क्या है, कि किसान तो छोटे हैं लेकिन उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, अब ये होगा कैसे? अब आप देखिए कि जो 4 विकल्प उन्होंने दिए हैं ना, वो केवल आपको उलझाने के लिए दिए हैं। इतने बड़े बड़े वाक्यों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आपको भूल भुलैया में घुमा रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है कि देखें आप अपने आप को इस उलझन से निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। बस आप देखिए कि कितने बड़े बड़े वाक्य हैं, घुमा फिरा करके और कुछ नहीं। हालांकि चारों में जो बातें कही गई हैं वो एक जैसी नहीं है, वे बातें थोड़ी सी अलग अलग किस्म की हैं, और सभी बातों में आपको एक बात आम मिलेगी कि किसी न किसी कारण से, मतलब वो कारण दिया हुआ है कि जो छोटे किसान हैं उनके खेत बड़े भी हो गए हैं। जो इसमें कारण भी दर्शाए गए हैं वे बड़े खेत को दर्शाते हैं, वे बड़े खेत होने को प्रमाणित करते हैं कि किसानों के खेत इस प्रक्रिया से बड़े हो जाएंगे। यानी कि किस तरीके से उसने लंगी मारने की कोशिश की है इस प्रश्न ने। दोस्तों मैं इस प्रश्न के हल पर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं कि प्लीज, मैंने इस संकेत के तौर पर आपको कुछ बातें बता दी हैं, मेरे संकेतों को पकड़िए और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। टाइम लगाइए, आधा घंटा भी लगता है तो लगाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। लगाइए, जूझिए और फिर देखिए कि आपने सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो फिर उसे एग्जामिन कीजिए, इवेलुएट कीजिए कि भाई मुझसे समझने में कहां भूल हो गई, मैं क्यों सही उत्तर नहीं दे पाया, ऐसा भी आप कीजिए। डेफिनेटली कल हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं रवि दत्त, अशोक कुमार सीतामढ़ी बिहार से और हर्षिता दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।